ओम शांति। जिस किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है ज्ञान से संबंधित, या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड, या आपके कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो वो प्रश्न लिख करके आप मुझे दे दें। हमारे परम आदरणीय सूर्य भाई जी कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे हमारे हर प्रश्नों का समाधान करने के लिए। कई सारे प्रश्न निश्चित रूप से पिछले 3 दिनों में आपके समाधान हो ही चुके होंगे, जो आपने इतना सुंदर परमात्मा का ज्ञान यहाँ सुना समझा, प्रैक्टिकल कैसे उसे अपने जीवन में उतारना है। और कई सारे हो सकता है प्रश्न अंदर क्रिएट भी हुए होंगे ज्ञान से जुड़े हुए, तो सारे प्रश्नों का समाधान हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता जी करेंगे। इसलिए जिसको भी कोई भी प्रश्न पूछना हो वो पेपर में लिख करके मुझे दे दें। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय तपस्वी मूरत ज्ञान सूर्य परमात्मा के विशेष ज्ञान से संपन्न विशेष रत्न हमारे बीच में आ रहे हैं जोरदार करतल ध्वनि से। हमारे सूर्य भाई जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक मिनट हम सभी योग में बैठेंगे, तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था, देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इतनी महान हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है, जिनके चेहरे की आभा ही जिनका व्यक्तित्व बयां कर रही है। भाई साहब का मैं परिचय देना चाहूंगी, थोड़ा ही देंगे। मात्र 14 वर्ष की आयु में भाई साहब ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े। 1968 में भाई साहब ने अपना जीवन इस ज्ञान के और परमात्मा की सेवा के प्रति समर्पित किया, विशेष रूप से माउंट आबू स्थित मुख्यालय के खाद्य विभाग के आप व्यवस्थापक हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित समाधान कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिलों में आपने जगह बना लिया है। उनके समस्या के समाधान देने का श्रेय भाई जी आपको जाता है। सारे भारत वर्ष और विदेश में आप मेडिटेशन सिखाते हैं। करोड़ों आत्माओं के जीवन में जो उनकी परेशानियां थी उसका समाधान भाई साहब ने निकाला है। भाई जी को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें विशेष सम्मान है चाणक्य अवार्ड। भाई साहब के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सूरज भाई है सारे जग को रोशन करने वाले, ज्ञान रत्नों से हम सबकी झोलियां भरने वाले, दिल में उमंग आता है देखकर इनका जीवन, सुनकर इनकी बातें कट जाते विघ्नों के बंधन। रहते हैं सदा लालयित इनकी बातें सुनने को, दिल से आवाज आती इनके जैसा बनने को। दुआ है आप सूरज समान सदा चमकते रहें, गुड़ों की खुशबू से महकाते और महकते रहें। आदरणीय सूरज भाई जी, कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं जिनका समाधान हम आपसे चाहते हैं। भाई साहब, पहला प्रश्न है, बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि भाई जी का सम्मान
फूल दे दो, हो जाएगा काम।
उपरना पहनाकर बैच और पुष्प गुच्छ देकर के करें। बिल्कुल जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत और सम्मान करेंगे। भाई जी, एक प्रश्न आया है, इफ यू फील होपलेस इन लाइफ एंड डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड अ वे व्हेन ऑल डोर्स क्लोज। जब हम होपलेस हो जाते हैं जीवन में और कोई रास्ता समझ नहीं आता तो क्या करें?
ओम शांति। ये समस्या बहुतों के जीवन में चल रही है, यंगस्टर्स में विशेष रूप से। कंपटीशंस देते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बस, नीट का एग्जाम दिया, 3 बार दिया, क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, बहुत सारे विचार हैं इसके लिए मनुष्य के। आजकल यूपीएससी के एग्जाम देने का भी क्रेज बहुतों में रहता है, जबकि पता सबको है कि कितने लाखों में से कुछ 100 चुने जाते हैं, सबका नंबर नहीं आएगा। फिर भी देते हैं लोग 3 बार 4 बार 5 बार, नहीं होता तो बहुत निराश होते हैं। तो हमें कुछ सिद्धांत जीवन के बना लेने चाहिए। मैंने जो अपने जीवन में सिद्धांत रखा वो ये था, आपको काम आएगा, कर्म करो, पूरी मेहनत से करो, दिल लगाकर करो, जो परिणाम आ जाए उसे एक्सेप्ट करो। पसंद है आपको? अगर कहीं हमें सफलता नहीं मिलती, ये तो सत्य है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर फील्ड में सफलता मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। एक द्वार यदि हमारे लिए बंद है तो दूसरा द्वार अवश्य खुला होगा, उसे ढूंढ लें तो निराशा नहीं आएगी, क्योंकि आजकल बढ़ी हुई निराशा बच्चों को दो तरफ ले जा रही है। जब मेरे पास केस जाते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे या तो सोचते हैं सफल नहीं हो रहे, मर जाओ, या गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत उमंग उत्साह से जीवन जीना है। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे सुंदर बनाना हमारा काम है। हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, ऊपर नीचे, ये सब इस यात्रा में होगा। कोई ऐसा महान पुरुष आज तक नहीं हुआ जिसको सदा सफलता हुई हो, लेकिन जो निराशा के अंधकार में नहीं भटकता, आशा का दीपक उसे एक दिन अवश्य मार्ग दिखा देता है।
एक प्रश्न आया है ज्ञान से जुड़ा हुआ, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? कुछ लोग अध्यात्म को धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, यह कितना सही है?
देखिए, धर्मों के बारे में तो आप जानते हैं, 4-5 मुख्य धर्म हैं, फिर उनकी शाखाएं निकली जिनको संप्रदाय कहते हैं, उनकी भी शाखाएं निकली जिसको मठ पंथ कहते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है जो कुछ उस धर्म के धर्म ग्रंथों में कहा गया है उसको जीवन में धारण कर लेना। यही धर्म होता है। इसलिए वास्तव में अगर आप सब धर्मों की स्टडी करें तो सभी धर्मों के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो समान हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसको धारण करते हैं, इसलिए धर्मों में कलह क्लेश। धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, उससे लोग दूर होते जाते हैं। धर्मों में ही सबसे ज्यादा हिंसा बढ़ती नजर आ रही है। अध्यात्म, ये शब्द इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ये शब्द स्पिरिट से बना है। अध्यात्म ना आत्मा के बारे में सब कुछ जान लेना, आत्मा के जो सातों गुण हैं उसको जीवन में अपना लेना, और आत्मा का जो परमपिता है उससे नाता जोड़ लेना, ये अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म हर धर्म के मूल में है, वो बीज है। धर्म में यदि अध्यात्म की शक्ति नहीं है तो वो धर्म निर्बल होता है, पावरफुल नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको किसी विशेष धर्म की बात बारे में बात नहीं कही जा रही, कहीं आपसे फूल नहीं चढ़वाए गए, किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा नहीं किया गया। यहाँ जो सिखाया जा रहा है उसको अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात जीवन को प्योरीफाई करना, आत्मा को, मन को, बुद्धि को स्वच्छ और डिवाइन बनाना, और जो सद्गुण है, हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, उनको जीवन में धारण कर लेना, इसको अध्यात्म कहते हैं।
बहुत सुंदर। एक प्रश्न आया है भाई जी, सच्चा और ईमानदार आदमी का समाज में सैंडविच क्यों बनता है जबकि दुष्ट आदमी फल फूल रहे हैं?
बन रहा है क्या किसी का सैंडविच? फिर तो खा लिया जाए। हम लोग भी सच्चे ईमानदार हैं, हम तो जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, है क्या? हम कलयुग के अंत में रह रहे हैं। सतयुग जब था वो सच्चाई, ईमानदारी, प्योरिटी और जो हमारे सब सद्गुण हैं इनका युग था, स्वर्णिम युग, सत्य का युग। कलयुग झूठ का युग है, तामसिकता है यहाँ, इसलिए सत्य का प्रभाव यहाँ अति कम दिखाई देगा आपको। इसलिए कलयुग में क्या हो रहा है, सत्य हार रहा है, असत्य जीत रहा है। पापी आगे बढ़ रहे हैं, पुण्य आत्माएं पीछे हट रही हैं। जो ऐसा वैसा पैसा कमा लेते हैं वो वीआईपी बन जाते हैं, जो ईमानदारी से कमाते हैं वो पीछे खिसक जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग का अंत है, पाप का अंत है, तामसिकता का अंत है। इसलिए सत्य और ईमानदारी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फिर भी एक मनुष्य को सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए, उससे जीवन बहुत सुखी होता है। मैं उदाहरण दे देता हूँ बिना नाम लिए, किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति के दो बच्चे जिन्होंने बीए कर लिया, दोनों ही डिप्रेशन में। मैंने फ्रेंडली जब बात हुई तो मैंने पूछा, क्या आपने अपने बच्चों की पालना गलत ढंग से की है? समझ गए ना आप, गलत धन किसे कहते हैं, धन मनी। सोच में पड़ गया, मैंने कहा कह दो ना, हाँ मुझे पता ही था उस लेवल के लोग क्या क्या करते हैं, मुझे पता है। तो ये सिद्धांत सभी याद रखेंगे, गलत तरीकों से कमाया गया धन आपके परिवार को, आपके बच्चों को चरित्रवान, सुख शांति खुशी से भरपूर नहीं कर सकता।
भाई जी एक प्रश्न है, यूथ जनरेशन को अध्यात्म से कैसे जोड़े?
हमारे यहाँ हम देखते हैं जब हम कोई भी अपने प्रोग्राम करते हैं, यूथ हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि यूथ्स में कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की बहुत अधिक इच्छा। इच्छा होती है। मैं तो देखता हूँ कुमार कुमारियाँ हमारे प्रोग्राम्स में बहुत आते हैं, मुझे भी कई कॉलेजों में स्कूलों में जाने का मौका मिलता है, अध्यात्म की तरफ वो बहुत आकर्षित रहते हैं। हमें ये समझाने की आवश्यकता है कि अध्यात्म उनके जीवन की मुख्य आवश्यकता है, उनके जीवन की नहीं, सभी मनुष्यों के जीवन की, क्योंकि मनुष्य का मन आज बहुत निर्बल हो गया है। युवकों को मैं देखता हूँ, अनेक युवकों में मानसिक रोग पनपते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ये जो सब कुछ आजकल चल रहा है। 50% युवक मानसिक रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं विदेशों में, अमेरिका आदि में बहुत ज्यादा। इसलिए हम कैसे उन्हें अपनी अध्यात्म की बात कहें जो उनके प्रैक्टिकल जीवन में काम आने वाली हो, उन्हें लगे कि ये चीजें हमारे विकास के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए, जो कुछ हम संसार में करना चाहते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं अध्यात्म से तो वैराग हो जाएगा, लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, काम धंधा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हम रियलिटी को बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करें ताकि हमारे युवा वर्ग को इन चीजों के महत्व का पता लगे। और जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ आने वाले युवक बहुत ज्यादा होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। वैसे अब एक प्रश्न है कि युगल आत्मा को व्याधि मुक्त कैसे बनाए, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी रोग है, और दूसरा है उन्हें व्यसन मुक्त कैसे बनाए।
देखिए, व्यसन मुक्ति की जो बात है, पहले मैं वो आपको बता दूं, हमारे यहाँ आने वाले तो लाखों लोग व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं, क्रोध से भी मुक्त हो चुके हैं। आजकल व्यसनों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है। जो दिल्ली से आए होंगे आप में से, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे एक दिन कि हर स्कूल के बाहर शराब की दुकान खोल दी गई है पियो मजे से। तो ये गलत जो नीतियां बन रही हैं, चाहे सरकारों की ओर से बन रही हो, चाहे जो बेचने वाले लोग हैं, स्मगलर कहते हैं ना शायद उन्हें, उनकी ओर से ये व्यसनों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे पास ही राजस्थान में कोटा है, जहाँ कोचिंग सेंटर बहुत हैं, वहाँ व्यसनों से युवकों को बचाना चैलेंज हो गया है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। एक संस्थाई बना दी गई है जो युवकों को बचाएं, उसे चोरी करने लगे युवक क्योंकि पैसा चाहिए, इसमें एक और क्या क्या वहाँ पैदा होते हैं, तो लोग उसके आदती बन जाते हैं। देखिए, हम लोगों का ज्ञान तीन चार बातें सिखा देता है, आपको विश्वास हो कम से कम 100,000 लोग हमारे यहाँ आने वाले ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही दिन शराब और व्यसन छोड़ दिए, नॉन वेज छोड़ दिया पहले ही दिन। और उसका कारण ये था, ज्ञान लेने पर उन्हें आभास हो गया कि तुम सतयुग में देवी देवता थे, तुम देवों की संतान हो, देवताओं के मंदिरों में उनके मूर्तियों के चेहरों पर भी कितनी दिव्यता रहती है, तुम वही हो। दूसरा पता लग गया, तुम आत्माएं हो मूल रूप से पवित्र। तीसरा पता चल गया, तुम भगवान की संतान हो, भगवान के बच्चे बहुत पवित्र होते हैं। राजयोग चौथा, जिसके माध्यम से ताकत आ गई विकारों को छोड़ने की और व्यसन छूटने लगते हैं। मैं तो यही कहूंगा, जिसको व्यसन छोड़ने हो वो राजयोगी बने। रही बात बीमारियों की, अभी क्योंकि आज प्रोग्राम बहुत लेट हुआ, आप सब भी बहुत भाग तोड़ के आ गए, मुझे तो था कि कैसे आएंगे आधे घंटे में लोग, लेकिन आप सब आ गए, मुझे कई चीजें कहनी थी। कितने प्रश्न हो रहे हैं बहन जी? बहुत सारे, क्योंकि मैं थोड़े में उत्तर दूं या विस्तार में दूं। किडनी, हार्ट, लीवर, आंखें और कई अंग शरीर के। एक छोटी सी टेक्निक से काफी मदद मिलती है इनको ठीक करने में, और वो टेक्निक आपको थोड़े बता देता हूं। मैंने ये प्रयोग कराए हैं, कम से कम मेरे अनुभव में 10 किडनी के पेशेंट ठीक हो गए, जिनमें से एक का एक्सपीरियंस तो चमत्कारी है, जिसको उसके भाई की दोनों किडनी लगा दी गई थी, बॉम्बे के हैं वो, हाई कोर्ट के एडवोकेट, हमारे यहाँ बहुत सेवा देते हैं, और वो किडनी असफल हो गई। अब थी उसकी मृत्यु, बिल्कुल मृत्यु निश्चित। तो उसको कुछ चीजें सिखाई गई, उनमें से एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। किडनी यहां पीछे होती है, आप अभी करेंगे, दोनों हाथ मलिए अपने और अंदर में संकल्प कीजिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जिन्होंने ज्ञान लिया वो जानते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोई भी संकल्प कर सकते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अब आपके हाथों में शक्तियों के वाइब्रेशंस आ गए, आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए, देखो ऐसे ऐसे नजदीक आ गए। इसको किडनी पे रख लो और संकल्प करो, भले आंखें बंद कर लो, इससे मेरी किडनी परफेक्ट हो जाए। एक दो मिनट रखेंगे, कोई और भी किसी की किडनी पे रख सकता है, कोई मान लो बुजुर्ग माँ है वो लेट जाए, कोई भी जो राजयोग करता है पीछे उसकी किडनियों पे हाथ रखे, फिर दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। लीवर भी नॉर्मल होगा, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होंगे। 5 केस तो मेरे पास ऐसे हैं जिनके ब्रेन में ट्यूमर थे, गांठ, ऑपरेशन। अब ब्रेन के ऑपरेशन का नाम सुन के लोग घबराते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमने राइट हैंड से ऐसे ही, इसको हम कहते हैं एनर्जी देना सिखाया, बहुत बहुत जल्दी ट्यूमर पिघल के खत्म हो गए। 10-12 केस ऐसे हैं जिनके हार्ट में छेद थे, बहुत कठिन काम होता है डॉक्टरों के लिए जब उन्हें पता चला 6 मास का बच्चा ही है और हार्ट में छेद है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ये करके राइट हैंड से एनर्जी दी उसकी दादी ने, वंडरफुल। एक केस था अमेरिका का, 11 दिन में बच्चे का छेद ही भर गया। ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था एक लड़की पूना की, जिसके हार्ट में 2 छेद, 17 साल की, उसकी माँ यहाँ आती थी, मुझे बताया, हमने उसको ये विधि बताई, और भी कुछ विधियां हैं। तो 40 दिन उसने किया, 1 घंटा मेडिटेशन भी कराया, 40 दिन में उसके दोनों छेद भर गए, और पूना के जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट थे सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये काम कैसे हो गया, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल उन्हें लग रहा था। एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, छोटी सी सिखा रहा हूं, मैंने शब्द बोला है और सबको करना है। अपनी बीमारियों को समाप्त करने के लिए, समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आप 11 दिन केवल सवेरे जब उठो क्षमा याचना करेंगे। एक क्षमा याचना, दूसरा क्षमा दान। देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छे अनुभव हैं लोगों के इसके, उदाहरण दे रहा हूं। अब से 500 साल पहले हम किसी बड़े पद पर थे, हमारे किसी कारण से, किसी ऑर्डर से 100 लोगों को बड़ा कष्ट हो गया था, उनकी बददुआएं, सिंपल भाषा, उनकी बैड एनर्जी अभी तक भी हमसे जुड़ी हुई है। वो कई मनुष्यों को रोगों से मुक्त नहीं होने देती, कईयों को समस्याओं से मुक्त नहीं होने देती। आप क्षमा याचना करेंगे, वो बैड एनर्जी नष्ट हो जाएगी, आपको बहुत राहत मिलेगी। बहुत अनुभव है मेरे पास इसके, 100 तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आके बताया होगा, और बहुत लोग हैं जो सुन के करते हैं। तरीका है, सवेरे उठो, सच्चे मन से संकल्प करो, मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो, बोल से, कर्म से धोखा दिया हो, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, आप प्रसन्न हो जाओ, मुझे क्षमा दान दो। आप देखेंगे पहले दिन से कितने अच्छे अनुभव होते हैं। दूसरा, क्षमा कर दो। किसी ने आपको सताया है इस जन्म में विशेष, आपके मन में वैर भाव है जो आपको सोने नहीं देता, आपको चैन लेने नहीं देता, आपको निगेटिव कर दिया, इसको पाठ सिखाएंगे, इसे बदला लेंगे, इसको ठीक करेंगे, क्षमा कर दो, सुखी हो जाओगे। अपने सुखों के लिए भी क्षमा कर दो। कभी कभी मनुष्य सोचता है क्षमा करना ही नहीं चाहिए इसे, तो कई लोग ऐसे होते हैं, हर व्यक्ति सोचेगा इसे क्षमा नहीं करेंगे, इससे तो बदला लेंगे, लेकिन हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अपनी शांति के लिए, अपने सुखों के लिए भी क्षमा कर देना चाहिए, तो इससे बीमारियों में बहुत मदद मिलेगी। दोनों आगे ठीक है, मैं डिटेल कर दिया थोड़ा।
भाई जी, इसी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है, कई लोगों ने पूछा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चलता है और डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ भी काम करना होता है तो कंफ्यूजन है, फिर बहुत गुस्सा आता है, रात में नींद नहीं आती है, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम है।
ये समस्याएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो संसार है इस समय मानसिक रोगों का शिकार होता जा रहा है। मैंने 2018 में सुना था, दिल्ली के हमारे एक साइंटिस्ट WHO में गए थे, अमेरिका, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले मधुबन में आए कॉन्फ्रेंस के बाद, और मुझे बताया कि वहां पर एक बात डिक्लेयर की गई है कि 2020 से इस संसार में डिप्रेशन सबसे बड़ी महामारी होगी। मैं तो 2015 से कहता था ये बात, क्योंकि मेरे पास युवक बहुत आते थे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे थे, उनके कुछ लक्षण आ जाते हैं उनमें, किसी को डर लगता है, किसी को एंग्जाइटी एक चीज होती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को ओवर थिंकिंग होती है, किसी का कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अकेला रहने को मन करता है। मैं केवल आपको दो तीन चीजें कह रहा हूं। एक चीज तो मैंने कह दी क्षमा याचना, दूसरी चीज मैंने बता दी आपको एनर्जी देना ब्रेन को, आंख बंद करके, बहुत इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी है ये। मैं कई साइकेट्रिक डॉक्टर्स को बताता हूं, और जो ये मेरी थेरेपी है मैं यही कहूंगा अभी, हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैंने वैज्ञानिकों की बात सुन के कुछ डेवलप किया है, तो हम क्लासेज में सुना देते हैं मेडिकल वालों को, तो अनेक डॉक्टर्स ने इनको एडॉप्ट कर लिया है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए, सवेरे उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, अब वो शब्द जान ले यहां से, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, इसलिए हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सिंपल हिंदी, बहुत शक्तिशाली हैं, मोस्ट पावरफुल हैं। सवेरे उठते जब आप ये लिखेंगे तो एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, तो यहां से एनर्जी जाएगी ब्रेन को, ब्रेन एनर्जेटिक होगा, डिप्रेशन और मानसिक रोग समाप्त हो जाएंगे। एक चीज और कह देता हूं, आप सबको बहुत काम आई, घुटनों दर्द को आप एनर्जी दे सकते हैं। बहुत बुजुर्ग माताओं के घुटने दर्द ठीक हुए। मैं आपको एक सुंदर समाचार सुना देता हूं, तीन ब्लाइंड माताएं बूढ़ी, उनकी आंखें खुल गई आंखों को एनर्जी देने से, बहुत सुंदर, ये खुश करने वाले अनुभव थे मेरे लिए, ऐसा होता नहीं है, उनकी आंखें खुल गई। एक तो 75 साल की माता थी, वो कहती थी शिव बाबा को, बाबा मुझे भले आप अंधा रखो, लेकिन मैं आपकी जो मुरली है ना, जो आप पता है ना हम यहाँ मावाक सुनते हैं, मुझे मुरली पढ़ने के लिए आधा घंटा आंख खोल दो, ऐसे रिक्वेस्ट करती थी, उसकी खुल गई, तो बहुत अच्छे ही अनुभव है। पानी चार्ज करके पीना, आप सबको पता हो पानी सबसे अधिक सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है बहुत ज्यादा, वहीं से मैंने ली है ये बात। तो पानी लो गिलास में, उस पे दृष्टि डालो, सात बार संकल्प करो मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। पानी में पावर बढ़ गई, भर गई, उसको पी लो, अनेक रोग आपके ठीक होंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, वो उस पानी को चार्ज करेगा और अनेक रोगों से मुक्ति होगी।
भाई जी, आपने समाधान तो कर दिया, लेकिन एक बहन है वो यही प्रॉब्लम पूछ रही है कि एक भाई बीमार है 27 साल से, वो ठीक नहीं हो रहा है और उसके लिए बहुत योग भी कर लिया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रेन में फीवर हो गया था और उसके बाद से वो बीमार है।
ये चारों चीज तो उसके लिए अपनानी ही चाहिए, लेकिन मैं उस चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, पर जो मैं कहने जा रहा हूं, आजकल ब्लैक एनर्जी, बैड एनर्जी के इफेक्ट भी दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को भी दिखा लिया जाए जो इस बैड एनर्जी को समाप्त कर दे तो राहत मिलेगी।
भाई साहब, ब्लैक एनर्जी या बैड एनर्जी जो है वो किसी को भी इफेक्ट कर सकती है?
अच्छे योगियों को तो नहीं कर सकती, जो पावरफुल हैं उनको तो नहीं कर सकती, पर जो डरते हैं, बहुत कमजोर हो गए, उनको जल्दी कर देती है, रात को कर देती है जब सोए हैं। ये तो बहुत खेल चल रहा है। मेरे पास तो कम से कम रोज एक केस ऐसा आता है, भाई जी सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, रिपोर्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, किसी की समझ में नहीं आ रहा, लाखों रुपए खर्च हो गए, क्या करें। मैं समझ जाता हूँ बैड एनर्जी का इफेक्ट है, कभी कभी पानी चार्ज करके पीने से भी ठीक हो जाता है, इसलिए मैं थेरेपी कराता हूँ।
एक क्वेश्चन है, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज अनसर्टेन, डेथ इज सर्टेन, प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ टू अर्न एंड सर्व फैमिली सोसाइटी एंड कंट्री एज अ होल विथ तन मन धन, देन हाउ टू गिव फ्रीडम टू द सोल एट द यंगर स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑल डिजायर्स ऑफ लाइफ।
क्लियर आवाज?
मतलब यंग स्टेज पर हम कैसे हम अपनी सारी इच्छाओं से खुद को फ्री कर सकते हैं?
इच्छाओं से फ्री? इच्छाओं से क्यों फ्री करते हो? अच्छी इच्छाओं को कायम रखो, जो बुरी इच्छाएं हैं उनसे अपने को फ्री करना होता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, इस बात को भी करेक्ट करना चाहता हूं मैं। फ्यूचर हमारे हाथ में, आवाज जो है गूंजती है ना तो मुझे क्लियर नहीं होती, फ्यूचर भी हम अपने हाथ में ले लें, और राजयोग से अगर आप एक चीज सीख लें, भगवान को अपना साथी बनाना, क्योंकि वो भाग्य विधाता है, तो उसकी मदद आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। और पास्ट को तो भुलाना ही है, पास्ट किसी का कैसा भी हो गया उसको तो भूलने में ही भलाई है, अगर पास्ट में रहेंगे तो वर्तमान को भी एंजॉय नहीं करेंगे और फ्यूचर भी कड़वाहट से भर जाएगा।
एक समाज सेवी है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बहुत सेवा करना चाहते हैं सभी की, जो फिजिकली या मेंटली जिनको आवश्यकता है, लेकिन आसपास नेगेटिव लोगों के कारण फिर वो नहीं कर पाते या उनके प्रभाव में आ जाते हैं।
देखिए, समाज सेवा करना आजकल समाज सेवियों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सच्चा क्वेश्चन है ये। हम दूसरों की जितनी भलाई भी करना चाहते हैं उतनी नहीं कर पाते। आप एक चीज सीख लेंगे यहां से कि किसी का भी कल्याण करने के लिए हमें पहले उस व्यक्ति को अच्छे वाइब्रेशंस भेजने चाहिए ताकि मेंटली वो तैयार हो जाए, और अगर हमारे अपने पास स्पिरिचुअल पावर होगी तो हम जो और लोगों की बाधाएं होती हैं उनको भी सहज पार कर सकेंगे। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, जयपुर में हमारा केंद्र है, बहन बैठी होगी यहाँ, वो अनाथ बच्चे बच्चों की बहुत सेवा कर रही है। उसने एक केंद्र ही खोल दिया अनाथ बच्चों के लिए, का एक डेढ़ साल के बच्चे भी हैं उसमें। सरकार भी बहुत खुश है, उसको बहुत दुआएं मिलती हैं, लोग बाधा नहीं डालते हैं। तो हमारे अंदर अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर है, यानी मन की शक्ति है, हम बाधाओं को बाधा न समझ के खुशी से पार करना जानते हैं, तो सेवाओं के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, सेवा का मार्ग ही ऐसा है जो अनेक चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन हमें हिम्मत से उन्हें पार करना ही होगा।
एक और प्रश्न अभी आया है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम रहती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द रहता है, ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, स्टोन की समस्या भी कई बार दिक्कत करती है।
कोई बची नहीं इसके बाद तो, क्योंकि एक समस्या के साथ अनेक समस्याएं होती हैं। स्पाइन की समस्या के लिए आपको एक्सरसाइज ही सीखनी पड़ेगी और कुछ जनरल चीजें। ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए स्पाइन का। मैं तो देखा अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करते हैं, 10 लाख रुपए ले लेते हैं और बेड पे, उसके बाद जीवन बेड पे गुजरता है। इसलिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ मसाज, कुछ छोटी मोटी आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेद इसमें आपको ज्यादा काम करेगा। एलोपैथी में तो पेन किलर के अलावा कुछ नहीं होते। मैं आपको एक राय दे रहा हूँ, गर्मी आपको ज्यादा लगती है क्योंकि हो सकता है गर्म बॉडी में अंदर जो हीट है वही आपकी सब समस्याओं का कारण हो। स्टूल में भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता। आप पानी लेंगे गिलास में, हल्का सा गर्म, बिल्कुल हल्का सा गर्म, उस पर दृष्टि डालकर 7 बार संकल्प करना, मैं पवित्र आत्मा हूं। दूसरा संकल्प करना, इस पवित्र पानी को पीने से मेरी अंदर की गर्मी शांत हो जाए। 7 बार करने दोनों संकल्प, कम से कम 5 बार ऐसा पानी पी लो दिन में और देखो इसका चमत्कार। मेरे पास अच्छे अच्छे अनुभव हैं इन चमत्कारों के, क्योंकि ऐसी गर्मी के केस भी आते हैं कभी कभी। एक केस, दो केस, एक कल आया, एक आज। एक ने तो कहा सारा टाइम 24 घंटे जैसे जल रहा है अंदर से शरीर, न सो सकती न बैठ सकती ऐसी है। तो ये कर्मों का भी खेल होता है, हमें राजयोग मेडिटेशन भी करना होता है, लेकिन ऐसे पानी करके पीना ये आपको काफी मदद करेगा।
एक बहन ने प्रश्न पूछा है, मेरी बेटी की हाइट बहुत छोटी हो गई है, बहुत उसके लिए प्रयास भी किया लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करें?
अभी स्वीकार कर लो, बुद्धि को बढ़ा दो, बुद्धि की हाइट बढ़ा दो, एंजॉय करो। क्योंकि ये क्या है, इसमें आप ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करेंगे, हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और हो सकता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट ही रुक जाए। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारे पास एक छोटे कद का भाई है, बुजुर्ग है, उसका वो मामा है उस लड़के का, वो यहाँ समर्पित है। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। कहा ये जो व्यक्ति है देखो, हाइट भी छोटी सी, गुंगा बहरा भी, लेकिन इसने गोल गप्पे बेच बेच कर पानी इतना टेस्टी बनाता था कि सारे, पता नहीं कोटा के, हाँ कोटा के हैं वो, कोटा में उसका नाम हो गया था। अपने दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा के, ट्रेनिंग दिला के बड़े बिजनेसमैन बना दिया है। अब वो यहाँ सेवा में आता है, अभी भी आया हुआ, किचन में रहता है। तो इस चीज का कोई, देखो उसके पास गुंगा बहरा और हाइट छोटी, पतला दुबला, लेकिन बुद्धि बड़ी थी ना, पूरे परिवार को संभाल दिया। लोग उसकी महिमा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके, जो चीजें नहीं हो सकती उसे एक्सेप्ट करो और उसी से आप आगे निकल सकते हो। हमारे पास ब्लाइंड लोग आते हैं, कई बड़े बड़े प्रोफेसर बन गए हैं, बड़े बड़े पोएट बन गए, बड़े बड़े सिंगर बन गए हैं। तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके जो चीजें की जा सकती है उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा जीवन का आप फॉर्मूला लेकर चलेंगे तो कभी निराश भी नहीं होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
भाई साहब, किसी ने प्रश्न पहले पूछा था कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई लेकिन वो बहुत इजी थी, माना किसी बीमारी से उन्होंने शरीर त्यागा, लेकिन उसके बाद वो कई बार सपने में आए या कुछ कम्युनिकेशन किया, जब उनका सब पूजा पाठ क्रियाक्रम हो गया और साधारण से मृत्यु हुई, उसके बाद भी वो आ रहे हैं सपने में, तो इसका कारण क्या?
इसका देखिए कई कारण होते हैं इसके आत्माओं के भटकने का। कारणों में न जाकर, एक तो उस व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत हो सकता है, अटैचमेंट उसको बार बार अट्रैक्ट करके वहां ले आता है, वो आना भी ना चाहता हो लेकिन मान लो उसकी माँ को उसका बहुत अटैचमेंट था तो माँ के अटैचमेंट के वाइब्रेशंस उसको आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे में केवल राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि ऐसे केस भी आते हैं हमारे पास कि वो तो हमें रोज रात को दिखता है हमारे घर में घूमता हुआ, हम उनकी मुक्ति के लिए 21 दिन का राजयोग मेडिटेशन कराते हैं और 21 दिन के बाद वो आते ही नहीं, मुक्त हो जाते हैं। राजयोग बहुत बड़ी शक्ति है। जो कुछ आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा सिखाया गया आप सेंटरों में जाके सीखना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती है, इससे हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
लास्ट प्रश्न है, गीता शिव परमात्मा ने लिखा है या कृष्ण ने
लिखा? तो दोनों ने नहीं सुनाई थी। अब आप सोचे युद्ध के मैदान में जो दिखाया गया श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे, कोई राइटर था क्या वहां, या कोई कंप्यूटर रखा था जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी, ऐसे कैमरे लगे हुए थे क्या वहां? बाद में चीजें लिखी जाती हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है, जो निराकार है वही ज्ञान देते हैं, लेकिन क्योंकि उसका किसी को पता नहीं चलता तो उससे जो नेक्स्ट है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भी नेक्स्ट टू गॉड है, सबसे महान आत्मा है सृष्टि की, सबसे महान देवता है, तो उसका नाम लिखा गया। बाकी गीता में बहुत अच्छी बात, आजकल तो गीता किसी ने देखी भी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पूछूं कि किसी ने गीता किताब देखी, किसी ने देखी आप में से गीता की किताब? चलो यहाँ तो बैठे, बहुत अच्छा, बधाई हो आप सबको। एक बार मेरे पास 18 लोग आए, सारे प्रोफेसर थे, वेदों पे बहुत बहस कर रहे थे, आपका ज्ञान इतना अच्छा लेकिन वेद क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा वेदों की ही बात पढ़ाई जा रही है लेकिन मंत्रों के बिना। मैंने पूछा जहां से वो थे कि ये बताओ आपके शहर में वेद 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 जहां बिकते हो वैसी दुकानें हैं क्या? मैंने सिंपल प्रश्न पूछा। 18 के 18 सोचने लगे कि कहीं है क्या। मैंने उनसे पूछा आपके पूरे शहर में कितने लोग वेद पढ़ने वाले होंगे? सोचने लगे बेचारे। मैंने कहा 18 होंगे। फिर मैंने पूछा अच्छा जितने भी पढ़ते हो आप, कहते हैं 1000 पढ़ते हो क्योंकि लाखों का शहर है वो, उनमें से वेदों की शिक्षाओं को धारण करने वाले कितने होंगे? कोई भी नहीं। यहां जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको जीवन में धारण किया जा रहा है, इसलिए वेद का अर्थ है विद्या, डिवाइन जो हमारी बुद्धि को बनाती है। ऐसे नहीं वेदों में विद्या नहीं है, है। लेकिन जब तक उस विद्या को धारण नहीं किया जाता वो विद्या निष्फल मानी जाती है। इसलिए लास्ट लाइन बोल रहा हूं, इस समय ज्ञान के सागर भगवान स्वयं आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं, जो लोप हो गया है वो आप सुनेंगे तो जीवन में धारण करने की शक्ति मिलेगी और आपकी बुद्धि भी डिवाइन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, बहुत ही सुंदर तरीके से भाई जी ने हमारे सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। हो गया समाधान सभी का? हाँ, तो एक बार फिर से भाई साहब के लिए जोरदार तालियों से भाई जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। एक बहन है अभिलाषा बहन, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सीकर जिले की ब्रांड एम्बेसडर 2016 से लगातार पर्यावरण प्रेमी रही हुई हैं। 5 लाख पौधे लगाए हैं इन्होंने और राज्य स्तरीय गरिमा बालिका संरक्षण अवार्ड से भी नवाजी गई हैं। प्लांट बेबी के नाम से नवाजी गई हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार ने इन्हें प्लांट बेबी का अवार्ड दिया है। तो आप हमारे आदरणीय भ्राता जी को प्लांट देना चाहती हैं, आ जाए मंच पर। बहुत सुंदर इनका भी अनुभव रहा है। पिताजी ने जब शरीर त्यागा तो ये डिप्रेशन में गई थी, फिर ब्रह्म कुमारी इसके संपर्क में आई और जब इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो इन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। 2 मिनट अभी योग करेंगे।